فتقبلها ربها بقبول حسن. تو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے ساتھ قبولیت کے اچھی، اس کے رب نے اس کو بہت اچھی طرح قبول کیا. یعنی قبول اچھی طرح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایک آپ کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں، وہ کہتا نہیں نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے. دوسرے آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ کہتا اچھا مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن چلو میں لے لیتا ہوں، بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ، بڑی اس کے ساتھ، کوئی زیادہ کوئی شوق سے نہیں. لیکن ایک ہے جب آپ کسی کو دیتے ہیں وہ شوق سے لیتا بھی ہے، اپریشیٹ بھی کرتا ہے اس کو، اس کو اس کی قدر بھی کرتا ہے. تو یہ ہے اچھی طرح قبول کرنا. اللہ تعالیٰ کا اچھی طرح قبول کرنا کیا مطلب ہوا؟ کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ان کو لے لیا، ان کا انتظام ہیکل میں کر دیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا، نشو نما دی، پرورش کی ان کی، اچھی پرورش اللہ نے کی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نظروں میں آپ کی پرورش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد بھی نہیں تھے، یہاں پہ بھی حضرت مریم کے والد بھی نہیں. بعض دفعہ کوئی یہ سوچتا ہے یہ کسی کا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی عمر میں دونوں والدین سے محروم تھے، تو اب کیا بنے گا، ہائے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہم والدین ہیں تو ہم ہی شاید بچوں کو بہترین ہم پروان چڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہماری اپنی ذمہ داری ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ والدین ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور جس کے نہیں ہیں تو وہ تو بس گیا. نہیں، آپ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے پرورش کی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تو اچھی پرورش کرنا ان کی. ہم نہیں کر سکتے، ہم کوششیں کر سکتے ہیں مگر اللہ کے اوپر ہے. تو پرورش کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سمجھ اچھی دی، ان کو اچھا پروان چڑھایا، اخلاق ان کو اچھا دیا، جسمانی طور پہ بھی اچھی نشو نما کی، روحانی طور پہ بھی اچھی نشو نما کی، سیرت، صورت، کردار، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی نا، بہت عمدہ دی ان کو، اچھا کیریکٹر دیا ان کو، ذہانت دی ان کو، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی. تو یہ ورڈ کیوں آیا نبت؟ نبت کرنا تو پودوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ پودے کو نشو نما دینا اور انسان کی پرورش کرنے میں بہت سملیرٹی، بڑی محنت لگتی ہے، بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں ہو جاتا. پودوں کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے، انسان کے بچے کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے کہ وہ خود ہی پلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا جیسے مرضی ہو، فل ٹائم جاب ہوتی ہے. اور جیسے پودا نازک ہوتا ہے، انسان کا بچہ بھی بڑا نازک ہوتا ہے. پودے کو آپ اچھی کھاد ڈالیں، سورج کی اچھی روشنی ملے تو وہ اچھا گرو کرتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، بچے کے لیے بھی اسی کام. وَكَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت کی اس کی زکریا علیہ السلام نے. انہوں نے کیوں کفالت کی، یہ ہم لاسٹ آیت میں دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیسے ذمہ داری آئی. ان کی کفالت یعنی ان کے گارڈین بنے، اب ان کے اوپر ذمہ داری ہے ان کی ساری چیزوں کی، مطلب ان کی ظاہر ہے ہیکل کے اندر اب ان کی ہو رہی ہے پرورش. ابن جریر نے لکھا ہے کہ اپنی تفسیر میں کہ حضرت مریم کی والدہ ان کو اٹھا کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیکل لے کے آئے، اور یہاں کے جو بھی وہ بڑے ان کے پادری تھے ان کے پاس گئی، ان کو کہا کہ یہ اس طرح سے میں لے کر آئی ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں لے سکتے اس کو، کیونکہ اس وقت یہ دیکھیں ایک تو ایک انفینٹ ہے اور پھر ایک بچی ہے، تو ہم کیسے اس کو لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اتنے اچھے خواب دیکھے، انہوں نے اپنے خواب سنائے، اور پھر یہ ان کے امام کی بیٹی بھی تھی، اس کی وجہ سے بھی وہ اس پہ راضی ہو گئے. اور پھر کیا ہوا تھا وہ ہم اگلی آیت میں جو اینڈ 44 آیت ہے اس میں دیکھیں گے. تو یہ بھی توفیق کس کو ملی، یہ آنر کس کو ملا، زکریا علیہ السلام کو یہ آنر ملا کہ وہ انچارج بنے، ان کے سارے معاملات کو کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کو سکھانے والے علم، ان کی پروگرس چیک کرنے والے، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا انچارج اس کی اٹینڈنس چیک کرنا، اس کا ہوم ورک چیک کرنا، اس سے سارے چیزوں کے ان کے انچارج یہ تھے، اور یہ ان کے خالو بھی تھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جس کو، कि वो उससे नेकी का काम ले ले। तो ज़करिया अलैहि सलाम पैगंबर भी थे उस ज़माने के, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, उनको चुना। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया मेहराबा, जब कभी भी दाखिल होते थे ज़करिया अलैहि सलाम मेहराब में। मेहराब कौन सी जगह थी? वो खास कमरा था जहाँ पे हज़रत मरियम इबादत करती थी, यानी अब वो बड़ी हो गई हैं तो वहाँ पे वो बैठ के इबादत करती थी, इल्म लेती थी। सेपरेट जगह थी, जैसे हम कहते हैं हुजरे बने होते हैं मस्जिदों के साथ। वह ज्यादा इंदहा रिस्कन, तो उनके पास रिस्क पाते थे। वो रिस्क क्या था? दो इसके बारे में बातें आती हैं। एक ये कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई मेवे थे या कोई नॉन सीजनल कोई फ्रूट्स थे, बेमौसमी फल थे, तो ये रिस्क था। या दूसरा इसके बारे में उलमा कहते हैं कि सहीफे थे इल्म के, बहुत ज्यादा इल्म ये था। तो जब भी वो आते थे तो इनके पास इल्म और हिकमत की बातें और ऐसे सहीफे देखते थे, या फिर ऐसे बेमौसमी फल जो उस मौसम के ही नहीं है। देखिए उस वक्त तो कोल्ड स्टोरेज नहीं होते थे जहां से फल ला के रख दिया किसी ने, और इनके पास तो कोई और आता भी नहीं था। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको सर्दियों में आम मिल जाए तो जाहिर है वो कोल्ड स्टोरेज से आ सकता है आज के दौर में तो, लेकिन उस जमाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो उनके पास ऐसे बेमौसमी फल देखते थे, या इल्म इल्म की बातें हिकमत की बातें ऐसी देखते थे। काला कहते, या मरियम ए मरियम, अन्ना लगी हाजा, कहाँ से आपको ये सब मिलता है? अब एक लड़की, यंग लड़की, आप देखें अब जवाब उनका, सुभान अल्लाह, आप देखें इन्हें क्या, हाँ मैं तो बड़ी ये करती हूँ और ऐसे होता है और ऐसे नहीं। कालत कहने लगी, हुआ मिन इंदिल्ला, ये अल्लाह के पास से है, ये मुझे अल्लाह के पास से मिलता है। इन अल्लाह यरजुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, बेशक अल्लाह रिस्क देता है जिसको वो चाहता है बगैर हिसाब के। अब जवाब से ही आपको उनकी जहानत पता चल गई, यही अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अगर फल थे तो हमें नहीं पता, तफसीर में नहीं पता चलता कि कहाँ से उनको ये फल मिलता था, कैसे आता था। और फिर इनकी आजी पता चलती है कि अगर इल्म है उनके पास या कोई सहीफे हैं, तो ये नहीं कि हाँ जी मैं बड़ी अकलमंद हूँ, बस मैं मेहनत ही इतनी करती हूँ, ऐसे ही तो नहीं मुझे आ गया, नहीं मैं बड़ी अल्लाह वाली हूँ तो इसलिए मेरे पास, नहीं हुआ मिन इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से। हमें कोई चीज ऐसी मिल जाए, कोई अनयूजुअल, कोई यूनिक चीज, कोई ऐसी अच्छी चीज जो दूसरों के पास नहीं हो, और दूसरे पूछे आपको, आपको कैसे ये हासिल है, कितना कितनी दफा हम ये जवाब देंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ से। आप कैसे ये काम सारे कर लेते हैं, आप कैसे पढ़ लेते हैं और ये आप इतने काम कर लेते हैं, अल्लाह की तरफ से। आपको ये नेमतें कैसे मिल गई, अल्लाह की तरफ से, यानी कि हमारी मेहनत से है। इन अल्लाह यरजुकु मैं यशाउ बिगैर हिसाब, ये पहले भी हमने ये बात पढ़ी थी, अल्लाह रिस्क देता है जिसको भी वो चाहता है बगैर हिसाब के। यानी ये भी किसका फैसला होता है, किसको कितना रिस्क देना है, अल्लाह का, जिसको चाहे बगैर हिसाब के दे। फिर आप जेलस क्यों होते हैं, क्यों जेलस होते हैं लोगों के घर देख के, उनकी गाड़ियां देख के, उनके अच्छे कहीं रिश्ते हो जाए तो देख के, कोई बड़ी खुशियों के साथ रह रही हो तो उसको देख के, किसी का शौहर उसको बड़ा पूछता है, उसको बड़ा चाहता हो तो वो देख के। ये सब रिस्क है, सिर्फ पैसा रिस्क नहीं होता, ये जितना कुछ चीजें नेमतें होती हैं ना इंसान के पास, ये रिस्क है। चाहे वो इल्म है, चाहे वो जहानत है, चाहे कोई नेकी की इवन तौफीक मिल जाना, ये भी रिस्क है। चाहे अच्छा घर, अच्छा रिश्ता, अच्छा शोहर किसी को मिल गया, अच्छा स्पाउस मिल गया, ये रिस्क है। तो ये रिस्क अल्लाह जिसको चाहे बगैर हिसाब के अता करें। फिर शिकवा किससे करें? फिर अगर शिकायतें करनी है या इतराज करना है तो अल्लाह की तकसीम पे कर सकते हैं, उस बंदे के ऊपर तो नहीं कर सकते, है ना। हुनालिका, उसी जगह पे, उसी वक्त, एट द मोमेंट, दा जकरिया, जकरिया अलैहि सलाम से रहा नहीं गया, उन्होंने दुआ की, रब्बा हु, अपने रब से। किससे दुआ की? अपने रब से। ये नहीं कहा ऐ मरियम, तुम इतनी नेक बच्ची हो, तुम ही मेरे लिए दुआ कर दो, फिर तुम्हें जो भी ये मिल रहा है तो मेरा भी अल्लाह को कह दो, या अल्लाह इस मरियम के सदके मुझे भी अता कर दे। जाहिर है जब आप किसी को देखते हैं ना, जो किसी के पास कोई बड़ी नेमत, कोई अनयूजुअल चीज ऐसी हो जाती है, तो ओ ये तो बहुत अल्लाह वाली, बस यही हमारे लिए दुआ करेंगे, अब अपने लिए तो दुआ नहीं करनी। अब जब उन्होंने देखा कि इस बच्ची को अल्लाह बेमौसमी फल दे सकता है, इस बच्ची को ये सही पे ये इल्म दे सकता है, कहाँ से दे रहा है वो अल्लाह को पता है, तो मुझे भी दे सकता है बेमौसमी औलाद, तो दिल में एक उम्मीद पैदा हुई और उसी वक्त दुआ की, मौका को जाने नहीं दिया। अच्छा, अगर हम किसी के पास नेमत देखते हैं ना, तो हम भी क्या दुआ करते हैं अपने लिए? अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया ना, सल्लल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह से सवाल करो, उसके फजल में से मांगा करो। क्यों एक दूसरे से जेलस होते हो? किसी की नेमत देख के यानी क्या करना चाहिए? अपने लिए दुआ करनी चाहिए। अगर आपको किसी का बच्चा अच्छा देखते हैं, लायक देखते हैं, नेक देखते हैं, तो ये नहीं कि वो जल बुन जाए, या ये नहीं कि अपने उसके ऊपर डिप्रेस हो कि हाय मेरे बच्चे क्यों नहीं है ऐसे, बल्कि उस वक्त क्या करना चाहिए, अल्लाह तूने इसको अता किया, मुझे भी अता कर दे। ये सही अप्रोच है। अब जिसकी जो चीज देखते हैं उसके ऊपर अब चैन नहीं आता, क्यों उसको ये मिल गया, उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी थी, अब वो उसी के अंदर घुलते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो जलने की जरूरत नहीं, जहां से उसको मिला है वहीं से मुझे और आपको भी मिल सकता है। तो अल्लाह से मांगा करें उस वक्त, खाला रब्बी हबली मिल्लतुन का ज़ुर्रियतुन तय्यबा, कितनी दिल में उनकी ख्वाहिश होगी ना। क्या आपका मतलब है पहली दफा मांग रहे होंगे वो? नहीं, जाहिर है पहले भी मांगते होंगे, लेकिन अब जब ये देखा ना, तो एक हूक उठी दिल के अंदर कि अल्लाह तू इसको दे सकता है, तो अल्लाह मुझे भी अपने पास से अता फरमा दे। औलाद पाकीज़ा, इतने बूढ़े हो गए हुए थे, अभी मैं आपको बताऊंगी सूरह मरियम में क्या इनकी हालत थी, यानी तकरीबन 100 साल के करीब इनकी एज थी, और क्या कह रहे हैं, अल्लाह मुझे दे देना औलाद तय्यब। ज़ुर्रियतन तय्यबा कैसी होती है? तय्यब हम कहते हैं ना पाकीज़ा, यानी नेक साले, यानी ऐसी औलाद जिसका किरदार भी पाक हो, जिसका अमल भी पाक हो, जिसका ईमान भी पाक हो, जिसकी हेल्थ हेल्दी भी हो, यानी सेहत वाली भी हो, उसमें भी यानी फिजिकली भी पाक हो, मेंटली भी पाक हो, स्पिरिचुअली भी पाक हो, हर तरह की पाकी आ गई, हर तरह का तय्यब होना इसमें आ गया। ऐसी तय्यब मतलब वो जो दिल को खुश कर दे, दिल को मुतमईन कर दे, तो ऐसा बच्चा तो मुझे अता फरमा, जिस्मानी तौर पे भी सही हो, सही सलामत हो, रूहानी तौर पे भी। इतनी अच्छी ये दुआ है हर उस औरत के लिए जो औलाद की नेमत चाहती है। तो इन्ना का समी और दुआ, अल्लाह तू तो सुनने वाला, दुआ का तू सुनने वाला अल्लाह, तू किसी की दुआ को रद्द नहीं करता, तू सुनता है दुआओं का। अब आप देखें, पहले भी इन्होंने दुआ मांगी हुई, तो अब क्या होना था? कोई और होता तो कहता लो आज तक तो दुआ कबूल नहीं हुई, अब क्या होनी, लो छोड़ो अब क्या मांगना, अब तो वैसे ही मैं बूढ़ा हो गया और अब क्या उम्मीद रह जाती है, और अल्लाह ने तो मेरी कभी सुनी ही नहीं। तो इतनी प्यारी इनकी एक बात मुझे बहुत ही पसंद है, जो सूरह मरियम में आती है, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये है तेरे परवरदिगार की उस पर मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे जकरिया पर किया, जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, ये बात है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया, अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा। हमारी बात शुरू किससे होती है? हम दुआएं मांगने लगते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? हाय मेरी तो वैसे सुनी नहीं जाती, मेरी नहीं सुनी जाती, और वो क्या कह रहे हैं, सारी जिंदगी औलाद नहीं हुई। मैंने आपको बताया ना, को जरूरी हो, जरूर ऐसा होगा, जो अब भी जाके अगर मांग रहे हैं तो जरूर ऐसा होगा कि पहले भी मांगते होंगे। जो बंदा इतने बुढ़ापे में 100 साल के करीब पहुंच के, कि जो कह रहा है कि अल्लाह मेरा सर बुढ़ापे से भड़क रहा है, या अल्लाह मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, और फिर भी अगर वो मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने पहले भी मांगी है और उसके दिल में ये ख्वाहिश थी पहले से, आज नहीं कोई पॉपअप हुई। लेकिन वो फिर भी ये नहीं कहता आज तक तो मांगा अल्लाह, आज तक तो मिला नहीं, चल अभी दे दे। नहीं, सुभान अल्लाह, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, अल्लाह अकबर। ऐसे अब हमें अपने दुख को, अपने गम को, अपने हाल को अल्लाह के आगे ऐसे रखना चाहिए कि अल्लाह पहले अपनी सारी बात बता के, अल्लाह मेरा ये गम है, मेरा ये दुख है, ये नहीं कि बस अल्लाह ये दे दे, अल्लाह मुझे ये, मेरे ऊपर ये गुजर रही है, मैं इस हाल में हूं। पहले उन्होंने अपना हाल बताया, मेरी हड्डियां कमजोर है, मेरा सर बुढ़ापे की वजह से भड़क रहा है, यानी सर सफेद हो गया सारा, लेकिन अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा। हालात कितने ही इंसान के अनफेवरेबल हो, तंग हो, और उम्मीद कभी नहीं छोड़, ये नहीं कभी सोचना मेरा कहां से सुनी जानी। अच्छा तो फिर नहीं सुनी जानी तो जाओ, फिर जो तुम अल्लाह के बारे में गुमान करते हो फिर वैसा ही है, जो आप अल्लाह के बारे में गुमान करेंगे वही होगा ना। अल्लाह ताला कहते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। अगर आप ये कहते हैं नहीं मेरी कभी सुनी ही नहीं जानी, मेरी तो कभी सुनी जाती नहीं है, तो ठीक है, नहीं फिर जाती है सुनी, ठीक है। तो फिर आगे है कि मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है, कि यानी मेरे मरने के बाद उनका क्या बनेगा, कोई अगर नहीं ये वाज करेगा, नसीहत करेगा, तो मेरे रिश्तेदार हैं ये, उनमें से कोई भी अहल नहीं है इसका, तो फिर वो सही रास्ते से गुमराह ना हो जाए, और मेरी बीवी पे बांझ है, तो मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी वारिस हो, और मेरे रब तू उसे मकबूल बंदा बना दे, वजअलहु रब्बी रदिया, हाँ पसंदीदा बना ले जनाब। दुआएं देखें कैसी हैं। तो इनकी इतनी खूबसूरत दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, और ये नहीं उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसी दुआ करूंगा तो मुझे तो शर्म आती है ऐसी दुआ करते हुए, और मैं कैसे मांग लूं अल्लाह से, लोग क्या कहेंगे, आज तो इतना बुढ़ापा तो दूर की बात है, अगर कि कोई किसी के बच्चे बड़े हो जाएं और उसको औलाद, उन्हें औलाद हो जाए, तो फिर हम मुसलमान हैं लेकिन हमारी बातें सुना करें। कभी सुनी है आपने ऐसी बातें लोगों को करते, ये सुना करें कि देखो इसको क्या आ रही है, ये पैगंबर थे। और अगर हम इस तरह की चीजों के ऊपर बातें बनाने वाले हैं ना, तो सोचें हम पैगंबरों पे भी बातें बनाने वाले होते हैं, क्योंकि तो ये हम आज अगर ये कर रहे हैं तो वो तो पैगंबर इतने बूढ़े थे, फिर हम उस वक्त क्या करते हैं, हम उनको क्या कह रहे होते हैं। तो ये तो पैगंबर के साथ हुआ है, और उस चीज को भी हम भूल के, इन्हीं पैगंबर के साथ नहीं हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे जलील उल कदर पैगंबर के साथ भी हुआ, कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो कितने बुढ़ापे को पहुंच चुके थे, लेकिन हम मुसलमान हो के कितनी बातें बनाते हैं, और ये सोचेंगे इनको कितनी आखर आई हुई थी, और इसको बेशर्मी की बात समझते हैं, तो फिर ये क्या नऊज़ु बिल्ला ये बेशर्मी पैगंबरों में भी थी, ये कहना चाहते हैं हम, तो तौबा करनी चाहिए ऐसी बातों से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फनादतुल मलाइका तो वह कायम युसल्ली फिल मेहराब, बस पुकारा उसको फरिश्तों ने, यानी अभी उन्होंने दुआ की थी, और दुआ क्या की थी, रब्बी हबली, अच्छा एक बात, हबली का मैंने आपको तर्जुमा नहीं बताया, हबली मैंने आपको बताया ना तोहफा, एक अल्लाह ताला ऐसी एक मुझे ऐसे एक अता अपनी तरफ से अता फरमा, فنادت الملائكة تو وہ قائم ہوئی یصلی فی المحراب، پکارا اس کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے محراب میں. اب ان کی الگ محراب تھی، ان کی محراب وہ نہیں ہے جو حضرت مریم کی تھی، ان کی اپنی محراب تھی، یعنی محراب وہ خاص جگہ جہاں پہ عبادت کرتے تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا نا، وہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک خاص جگہ اپنے لیے مقرر کی ہوتی تھی اپنی عبادت کے لیے. اگر ہم بھی کر سکیں تو، ضروری نہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کوئی ایک خاص کمرہ ہی آپ بنائیں، ہو سکتا ہے گھروں کے اندر نہیں اتنی گنجائش ہو کہ خاص نماز کا کمرہ ہو سکے، لیکن چلو ایک اسپاٹ آپ بنا لیں جہاں پہ آپ اپنی عبادت کریں، جہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی پڑھائی کریں، جہاں پہ آپ کی ساری چیزیں موجود ہوں جو آپ جو بھی آپ کو یعنی اپنی تعلیم لینے کے لیے چاہیے، تو وہ ایک خاص آپ کا کارنر ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈیکیشن. آپ جو بھی جگہ مقرر اپنی کرتی ہیں وہ پھر ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بہت شور شرابہ ہنگامہ نہ ہو، جہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز نہ ہو، جہاں پہ کوئی ٹی وی نہ چل رہے ہوں، تاکہ آپ فوکس کر سکیں. یہ محراب میں کھڑے کے نماز پڑھنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ فوکس، تاکہ کوئی چیز انسان کو ڈسٹرب نہ کرے. تو کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ ایسا سپورٹ اپنے لیے رکھیں. لیکن آج تو کیا کریں، اور چیزیں نہیں بھی ہوں تو ہمارا فون ہی کافی ہے ہمیں فوکس سے ہٹانے کے لیے، جو ساتھ ہر وقت ہمارے پڑا ہوتا ہے اور پھر ہم اس سے ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح کی ڈسٹریکشنز کو الگ کرنا چاہیے. جب اللہ کے لیے کھڑے ہوں یا اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے اور آپ نے کوئی وقت اللہ کو دے دیا نا، تو اس کو ڈسٹریکشن پروف کریں، ڈسٹریکشنز ہٹا دیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس حال میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس فرشتے آئے. اب بعض جگہ پہ آتا ہے کہ فرشتوں سے مراد یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام، لیکن پھر فرشتے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی تعظیم کے لیے. جیسے کسی کو بہت عزت دی جاتی ہے تو پھر اس کو سنگولر کی بجائے پلورل کی فارم میں اس کو کہا جاتا ہے نا. تو اسی طرح جبرائیل علیہ السلام آئے لیکن ان کو فرشتوں کہا گیا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یہ نہیں کہا بیٹے کی، یحییٰ کی، یعنی نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا کے بھیجا. مصدقم بکلمت من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. کلمت اللہ سے مراد کیا ہے؟ دو باتیں مراد ہیں. نمبر ون، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو اللہ کا کلمہ ہے، ان کی یہ تصدیق کریں گے کہ اللہ کے نبی ہیں. اور ان کو کلمت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ تو تھا نہیں ان کا کوئی، تو وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. باقی سارے انسان تو ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. نمبر ٹو، اس سے مطلب ہے کہ اللہ کی آیات، اس کے کلام، اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. وہ سیدن، اور سید ہوں گے یعنی امام ہوں گے، لوگ ان کو فالو کریں گے، لیڈر ہوں گے. سبحان اللہ. وحسورا، اور حسر سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یعنی خود کو کنٹرول کرنے والے، کنفائن کرنے والے، لمٹ کرنے والے. جیسے انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے نا، ہم نے پہلے خواہشات کی بات پڑھی تھی کہ خواہشات کی جو محبت ہے وہ بھی انسان کو پیاری ہوتی ہے. تو یہ اپنے آپ کو ایسی تمام خواہشات سے، اور خواہشات میں سب سے پہلی چیز کیا تھی جو انسان کو سب سے زیادہ آدمی کے لیے محبوب ہوتی ہے؟ وہ عورت ہے جو سب سے زیادہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہوتی. تو عورتوں سے دور رہنے والے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، نہ ان کو کوئی خواہش تھی. اور پھر اور دنیا کے مال کمانا، یا دنیا داری، یا اور دنیا کی جتنی اٹریکشن، فن، انٹرٹینمنٹ، ان سب سے دور تھے. پاک باز اسی لیے کہا گیا نا، وہ خود حصر میں ہے نا، لمٹ کرنے والے، خود کو کنٹرول کرنے والے. ٹھیک ہے، وہ نبی، اور نبی ہوں گے. سبحان اللہ. مین الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اب کتنی ساری کوالٹیز ہوں گی، یہ پانچ کوالٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت زکریا علیہ السلام کو دی. اور یہ کیا ہے؟ سراسر ان کے صبر کا پھل، ان کے صبر کا پھل. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے نا، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام यहया होगा, और ये नाम इससे पहले कभी किसी को नहीं दिया गया। हमने इससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं किया, यानी ये नाम इससे पहले कभी था ही नहीं। ठीक है, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने एक यूनिक नाम भी उनको दिया जो अल्लाह ताला ने रखा, माँ बाप ने नहीं रखा। यहया, कितना प्यारा नाम है ये। तो अब जब ये खुशखबरी उनको मिली, तो अब एक नेचुरली एक बात जहन में आती है, दुआ तो मांग ली थी लेकिन अल्लाह मेरी कैसे हो सकती औलाद, काला रब्बी अन्ना ये कौन ली गुलाम, अल्लाह मेरे बच्चा कैसे हो सकता है, वो कद बलगनी अल किबर हुआ अमरअती आखिर, मैं तो बुढ़ापे को पहुंच चुका है, मेरी बीवी भी बांझ है, सारी जिंदगी तो उसको औलाद हुई नहीं, अब जाके औलाद होगी, वो भी बीवी भी इतनी एज की हो चुकी थी, खुद 100 साल के करीब थे, तो बीवी सोचे तो या अल्लाह कैसी होगी, यानी असबाब तो कुछ नहीं है, असबाब के मुताबिक देखा जाए तो नहीं हो सकती औलाद, इंसान की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है जब उसका बुढ़ापा होता है, तो मेरे तो पहले ही बच्चे नहीं थे, अब कैसे होंगे, और इतने वीक थे, और औरत भी बांझ है, तो दोनों चीजें जो जरूरी हैं दोनों में से कोई भी नहीं है, ना मर्द इस काबिल है ना औरत इस काबिल, अल्लाह ताला ने सिर्फ क्या फरमाया, काला कदालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है, अल्लाह ताला जैसे चाहे करे, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुआतिया लिमा मनात, अल्लाह जब किसी को देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और रोकना चाहे तो किसी को कोई दे नहीं सकता, और उसको सबब की जरूरत नहीं है, वरना सबब तो यहाँ पे थे ही नहीं। ऐसे हमें पता चलता है कि जब नामुमकिन चीजें भी होती है ना, तब भी मायूस नहीं होना चाहिए, तब भी इंसान ये ना सोचे कि ये होगा कैसे, सबब तो नहीं नजर, सबब बनाना अल्लाह का काम है, ये सबब कैसे बनेंगे क्या होगा ये अल्लाह ताला जानता है। कहा रब्बी जाल ली आया, फरमाया अल्लाह मेरे लिए कोई निशानी कर दे, कोई साइन ऐसा मुझे दे दे, अब ऐसे नहीं कि उनको कोई यकीन नहीं था तो इसलिए कोई साइन मांग रहे थे, बस खुशी भी है हैरानी भी है, अब क्या जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि ए अल्लाह मुझे दिखा तो सही कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, आपने पढ़ा है ना सूरह बकरा कि मुर्दों को तू कैसे जिंदा करता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था वो परिंदे ले, 4 परिंदे ले लो उनको पहाड़ों पर रख दो, तो ये नहीं मतलब था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं, पता है, कहते मुझे पता है अल्लाह लेकिन मुझे दिखा तो सही, इस तरह ये कह रहे हैं अल्लाह मेरे कैसे होगा, अल्लाह मुझे कोई निशानी दिखा दे, काला आया तू कहा निशानी दे रही है अल्लाह तू कल्लिमुन्नास कि तू ना कलाम कर सकेगा लोगों से, कितनी देर, 3 अय्याम 3 दिन तक, इल्ला रमजा मगर इशारे से, यानी जब तुम्हारी बीवी कंसीव करेगी तो वो कोई प्रेगनेंसी टेस्ट तो होगा नहीं, वहां पे तो थे नहीं ऐसे, तो फिर उस वक्त क्या है तुमसे बात नहीं हो सकेगी, बातचीत बंद हो जाएगी, जुबान बंद हो जाएगी, और क्या करना फिर तुम उस वक्त जब जुबान बंद हो जाए, वज़कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इबकार, तू काम करना बहुत ज्यादा, अल्लाह का जिक्र करना और उसकी तस्बीह सुबह और शाम करना। अब यहां से पता चलता है कि बाज दफा ना इंसान जब टू मच लोगों के साथ बातचीत करने का आदी होता है ना, तो वो अल्लाह का जिक्र करना भूल जाता है, जाहिर अल्लाह के जिक्र का तो मौका नहीं मिलेगा जब आप बहुत बातें कर रहे होंगे, तो बाज दफा अल्लाह ताला इंसान को जब लोगों से डिस्कनेक्ट कर देता है ना, जैसे कि आजकल है कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट हुए हैं, उस तरह से नहीं मिलना जुलना हो सकता जैसे कि आम दिनों में होता था, तो अब इस डिस्कनेक्ट होने पे डिप्रेस नहीं होना, इसकी वजह से ऐसे गमगीन होके नहीं बैठ जाना क्या है अब क्या करें, मैं तो पहले मिलती जुलती थी अब क्या, या फिर गालियां देने लगे कोरोना को या क्या करने लगे, नहीं, अल्लाह ताला डिस्कनेक्ट करता है ना लोगों से, तो उसका भी एक मकसद होता है कि अब आप लोगों से कट के अल्लाह के हों। लोगों से बातचीत बंद कराता है ना तो इसलिए, ताकि अब आप अल्लाह से बात करें। ठीक है, तो इसको भी अपने लिए एक मौका समझे कि अल्लाह ने एक मौका दे दिया। आम दिन होते तो शायद ये मौका ही नहीं मिलता, इतनी हमारी ज्यादा कोई पार्टी, कोई लंच, कोई वहां, उसके ऊपर आधा दिन गुजर जाता है। ये दावत, वो दावत, ये मिलना जुलना, वो बाजार फलां, सब कुछ बंद कर दिया अल्लाह ने कि बस अब आप उससे बातें करें। जकरिया अलैहि सलाम की भी अल्लाह ताला ने जुबान बंद कर दी। अब इंसानों से तो बात नहीं हो सकती, इशारे में कितनी इंसान बात कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता ना, लिमिटेड हो गई बात। तो अब बातें अल्लाह से करना, ठीक है। अल्लाह अकबर। तो हमें भी अब बातें करनी है अल्लाह के साथ। अब ये भी हमें पता चला कि देखें, जिस वक्त कोई खुशखबरी मिले तो अब उसके बाद रिएक्शन क्या होना चाहिए। नेमत देने वाले को ना इंसान भूले, बल्कि उसका जिक्र कितना करे, जितना पहले करते थे, उससे भी ज्यादा। पहले नहीं भला ज़िक्र अलैहि सलाम जिक्र करते होंगे अल्लाह का, वो अल्लाह के पैगंबर थे। अल्लाह ताला फिर भी उनको फरमा रहा है, वज़कुर रब्बका कतीरन। हम कहते हैं और कितना करें, हम करते तो हैं, अब और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो पहले ही नमाज पढ़ती हूँ, पहले ही कुरान पढ़ती हूँ, पहले ही जिक्र करती हूँ। अगर हमें कोई कह दे कि अब आप रमजान है, अब आप और अल्लाह का जिक्र बढ़ा दें, या आप और आपको नेमत मिली, आप और अल्लाह ताला को याद करें, कहते हैं भले ही करते हैं। तो नहीं, कसीरा। अल्लाह अगर अपने पैगंबर को ये फरमा रहा है ना, तो हम सबका क्या जिक्र होगा और क्या हम करते होंगे। तो जब नेमत मिले तब जिक्र ज्यादा करना है और बढ़ा देना है, ठीक है। लोगों के साथ बातचीत कम, अल्लाह के साथ बातचीत ज्यादा। जिक्र क्या है? अल्लाह की याद है। और हदीस में आता है अल्लाह ताला इंसान के साथ होता है जब तक उसकी जुबान अल्लाह के जिक्र में हिलती रहती है। अल्लाह उसके साथ होता है, अल्लाह का साथ चाहते हैं, जिक्र बढ़ा दें, जिक्र किया करें। और जो वक्त लोगों के साथ बातें करने में लगता था खुशी मिलने के ऊपर, अल्लाह के जिक्र में लगना चाहिए। और सब पे फिल अशी वले बकार, तस्बीह करो अल्लाह की सुबह और शाम। अच्छा, खास तौर पे औकात का भी जिक्र यहाँ पे आया। वैसे अल्लाह का जनरल जिक्र बहुत ज्यादा करना है, ये नहीं कि सिर्फ सुबह और शाम करना है, ये नहीं कहा जा रहा, कतीरा बहुत ज्यादा। और स्पेसिफिकली तस्बीह करना शाम के वक्त और सुबह के वक्त, ये दो औकात आपको पता है। हमें भी मसनून दुआएं इस वक्त की सिखाई गई, मसनून अजगार है इस वक्त के, जो स्पेसिफिकली फजर के बाद करने के, असर के बाद करने के, वो जरूर करने चाहिए। वो खास टाइम है इनका, वो किसी और टाइम पे करेंगे तो वो नहीं उनकी अफादियत, ठीक है। तो हमारे ये रवैये होने चाहिए। देख लिया अब आपने नेक लोगों के क्या तरीके होते हैं, जब उनको नेमतें मिलती हैं, जब उनको खुशी की खबर मिलती है, गुड न्यूज उनको मिलती है, वाह वाह, और चीखना चिल्लाना और आपे से बाहर हो जाना, और पता नहीं क्या क्या, किस किस किस्म के रिएक्शंस होते हैं। हमें रिएक्शन क्या सिखाया गया? सजदाए शुक्र, फौरन सजदे में चले जाओ। ये मसनून तरीका है, जब खुशी मिले एकदम तो उस फौरन सजदे में जाओ, अल्लाह को याद करो। सजदे में इंसान अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, और वैसे भी इंसान अल्लाह का बहुत जिक्र करे। और अक्सर ये होता है कि हम खुशियां मांगते हैं, बहुत अरसे से मांग रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, खुशी मांगते हैं कि अल्लाह ताला शादी हो जाए, शादी हो जाए बस, कि अच्छा रिश्ता मिल जाए। ये जब शादी होती है तो क्या होता है, अल्लाह सबसे पहले भूलता, अल्लाह ही नहीं होता, बाकी सबको मनाया जाता है, रूठे रिश्तेदारों को भी मना के हम ले आते हैं शादी पे, लेकिन अल्लाह को नाराज कर देते हैं। ऐसा ही है ना। तो खुशी मिलने पर तो खुशी देने वाले को सबसे ज्यादा याद करना चाहिए, हम उलट क्यों कर देते हैं। वाहिद कालत अल मलाइका, तो और जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम, यानी अब दोबारा वापस किस्सा मरियम अलैहि सलाम का शुरू हो गया। और ये बीच में बात आई यहिया अलैहि सलाम की, तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि देखो यहिया अलैहि सलाम की पैदाइश भी मौजज़ाना थी। तुम हैरान होते हो ना कि ईसा अलैहि सलाम कैसे कैसे हो सकता है बगैर बाप के पैदा हो जाए, तो नाऊज़ बिल्ला खुदा ही उनका बाप है। तो ये नहीं देखते कि यहिया अलैहि सलाम की पैदाइश कैसी थी, वहां पे भी तो बज़ाहिर असबाब तो कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल अननेचुरल। अल्लाह अगर वहां पे एक बच्चे को पैदा कर सकता तो यहां पे भी कर सकता। तो अब बताया गया हजरत मरियम का किस्सा कि अब जवान हो गई हैं, अपनी इबादत में लगी रहती हैं, इनके पास फरिश्ते आ गए, वह इस कालत मलाइका, तो फरिश्ते आए, उन्होंने क्या कहा, या मरियम, ए मरियम, इन अल्लाह अस्तफा की, अल्लाह ताला ने तुझको चुन लिया, और तहारा की, और पाक कर दिया तुझे, वस्तफा की आला निसा इल आलमी, तुझे जहान की सारी औरतों पर चुन लिया। सुभान अल्लाह, यानी ये आयत मुझे इतनी ऑलवेज बहुत मुतासिर करती है कि कितनी खुशकिस्मती एक औरत की है। आप उसकी खुशकिस्मती का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको ये खुशखबरी मिल जाए कि अल्लाह ने उसको चुन लिया, अल्लाह ने उसको अपने काम का बना लिया। चुन लेने का यहाँ पे मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने उनको किसी बड़े काम के लिए सेलेक्ट कर लिया, अल्लाह ने उनसे कोई काम लेना है, अल्लाह ताला ने उनको अपना पसंदीदा बना लिया। और ये वो औरत है यूनिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि फरमाया कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि औरतों में से बेहतरीन औरत हजरत मरियम बिनते इमरान है, और औरतों में बेहतरीन औरत हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद है। तिर्मिजी की सही हदीस में है, सारी दुनिया की औरतों में बेहतर मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खुवैलिद, फातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया फिरौन की बीवी रदी अल्लाह अन्हुमा। और हदीस में ये भी आता है ये चारों औरतें तमाम आलम की औरतों से अफजल और बेहतर है। फिर एक और मशहूर हदीस है, फरमाया मर्दों में से तो कामिल बहुत से हैं, यानी मर्दों में तो बहुत सारे, देखे अंबिया कितने आए कितने आए, कितने औलिया आला, लेकिन औरतों में कमाल वाली औरतें सिर्फ तीन हैं, हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत खदीजा, और हजरत आयशा के बारे में फरमाया वो औरतों पे ऐसी हैं जैसे सूर्य सरीद जो होता है गोश्त के शोरबे में भिगोई हुई रोटी, ये तमाम खानों पे, ये उस वक्त का एक यानी बड़ा मरगूब, एक बड़ी फेवरेट डिश होती थी, एक डेलिकेसी होती थी, तो वो जैसे तमाम खानों पे उसकी वैल्यू है इस तरह हजरत आयशा की है। लेकिन कमाल वाली औरतें हर हदीस में कौन है, हजरत मरियम, हजरत आसिया। सुभान अल्लाह, कि जब उनको ये खबर मिली होगी, और देखिए ये इजी नहीं है, आप इमेजिन करें, ठीक है बुढ़ापे में तो बहुत लोग इबादतें भी कर लेते हैं, बड़े नेक भी हो जाते हैं, जाहिर है इंसान की ना उतनी ख्वाहिशात रहती हैं, ना पता भी होता है अब आगे जाने का वक्त आ रहा है, खैर सबको तो वो भी नसीब नहीं होता, लेकिन अक्सरियत को बुढ़ापे में जाके फिर भी अल्लाह की तरफ रुझान बढ़ जाता है। लेकिन असल बात ये वो होना था ना कि हदीस में भी आता है जवानी के इबादत गुजार को अल्लाह ताला के जो अर्श का साया नसीब होगा, कि जवानी का इबादत गुजार अल्लाह को बहुत पसंद है, और जवानी के बारे में अलग से हिसाब होता है होना है कि जवानी में क्या किया, और जवानी के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अभी तो मैं जवान हूं, अभी हिजाब लेना शुरू कर दूं, अभी अभी अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया इसने, इतनी जवान है, नहीं हमारे लिए तो ये सोचना ही कि कोई जवान है और वो कोई अल्लाह का बड़ा इबादत गुजार है, ये तो हमारी सोच में ही नहीं आता, यानी तस्बीह पकड़ना ये या अल्लाह अल्लाह करना ये तो बूढ़ों का काम है, वो एक तरफ बैठे वो बस करते रहे, उनके पास काम जो नहीं कोई और रह गया, अब चलना फिरना मुश्किल हो गया, कोई और काम करना मुश्किल हो गया, और कोई काम दुनिया में रहा भी नहीं। औलाद ने भी उठा के एक तरफ बिठा दिया, तो अब क्या करना, चलो अब यही कर देते। लेकिन असल बात यह, जब आपके पास ड्रीम्स है, यू आर फुल ऑफ एनर्जी और आगे के फ्यूचर देख रहे हैं आप, और बड़े आपके ख्वाहिशात हैं, टेम्पटेशंस हैं अंदर, अट्रैक्शंस दुनिया में है, आप कुछ कर जाने की तमन्ना रखते हैं, और आपको लगता है कि मैं पूरी दुनिया फतह कर लूंगी। जो जवानी में ये होता है ना इंसान के अंदर, ये एक जोश भी होता है, ताकत भी होती है, बलबला, इसीलिए तो बच्चे खड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप के भी आगे, कि वो जवानी का जिसको कहते हैं जोश, तो जवानी में इंसान की एनर्जी ही अलग होती है। उस एनर्जी को कोई अल्लाह की तरफ लगाए, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। फरिश्तों ने आके कहा कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, यानी सारी इंसानियत के ऊपर आपको चुन लिया, तो नसीब खुल गए उनके, तो ये चुन लिया अल्लाह ने, इतनी बड़ी बात। वह तहारा की, और आपको पाक कर दिया। पाक किस चीज से कर दिया, यानी एक तो ये कि फिजिकली भी पाक कर दिया, कि अब उनको कोई पीरियड्स नहीं, कोई इस तरह की चीज नहीं होगी। लेकिन एक और तरह से पाक किया कि अखलाक में पाक कर दिया, यानी हर किस्म की मानवी निजासत से पाक कर दिया, जिसके अंदर ये सारी बुरे अखलाक आ गए, बुरी आदतें, बुरी चीजें, बेहयाइयां, बुराइयां, ये सब आ गई ना, जो आमतौर पे यूथ में होती हैं। आप देखें, ये हम किसी बूढ़े की बात नहीं कर रहे हैं, एक यंग ब्यूटीफुल लड़की की बात कर रहे हैं। अगर नौजवान हो तो फिर तो शीशे से ही नहीं इंसान हटता, इससे बड़ा कोई ज्यादा मशवला क्या होता है। अपने आप को देख देख के खुश होते रहते हैं, इधर से देखते हैं उधर से देखते हैं, बस मसरूफियत ही यही होती है, संवारना अपने आप को, सजाना अपने आप को। लड़कियों के लिए तो ज्यादा यही है ना, कपड़ों के शौक, जेवर के शौक, घूमने फिरने के शौक, ड्रीम्स अपनी शादियों के, ये होते हैं, और ये किधर लगी हुई है। इतनी इबादत गुजार थी कि इनके बारे में आता है, इतना लंबा क्याम करती थी, दोनों टखनों पे इनके वर्म आ जाता था, स्वेल हो जाते थे, सुभान अल्लाह, लंबी लंबी नमाजें पढ़ती थी। और ये आसान नहीं होता, ये आसान नहीं होता। हम एक थोड़े दिन के लिए अपने घरों में बंद हो गए, तो हमने कहा आए, हमारे तो दिल घबरा रहा है, हम क्या करें, हम तो बस कहीं घूमना फिरना नहीं है हमारा, हमारी तो दावतें खत्म हो गई, वो देख लें, एक हैकल में अपने हुजरे में बैठी इबादत में लगी रहती, कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि दिल अल्लाह से लगाया हुआ ना। घबराहटें तब होती हैं जब इंसान के दिल लोगों में लगे होते हैं, अल्लाह से दिल लगता ही नहीं, अल्लाह से कभी दोस्ती करके ही नहीं देखी। तो उनको अल्लाह ताला ने पाक कर दिया था सारी इस किस्म की फजूल बातों से, गंदी बातों से, फजूल हरकतों से, फहाशी से, हर किस्म के ऐसी बुरे कामों से। वस्तफा की अला निसा इल आलमीन, अल्लाह ने तुझे चुन लिया सारे जहान की औरतों पे। पहला इस्तफा का क्या था, पूरी इंसानियत पे चुन लिया, और फिर सारे जहान की औरतों पे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सारे जहान की औरतों में अल्लाह ताला ने किन औरतों को सबसे बेस्ट बेस्ट, उनको कमाल वाली औरतें कहा है, जिनको अल्लाह ताला ने सबसे बुलंद मुकाम दिया है, जो बेस्ट रही इस दुनिया में, कोई और औरत इनके बराबर नहीं आ सकती। और यंग के लिए, अनमेरिड के लिए, या अनमेरिड नहीं भी हो तो जो भी यंग लड़की है, यंग औरत है, उसके लिए बेस्ट रोल मॉडल है हजरत मरियम। चुनना यह है कि अल्लाह ने अपने पास दर्जे भी बुलंद कर दिया, सारी औरतों पे इनका दर्जा बुलंद कर दिया। जहां तक ये चुनने का बात है, मैंने आपको जैसे बताया कि अल्लाह ताला चुनता है, ये अल्लाह का चुनाव होता है। इतनी औरतें गुजरी दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको चुना, तो अल्लाह ताला का चुनाव भी उसकी हिकमतों पे मबनी होता है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, इनकी वालदा का भी खुलूस है, हन्ना ने जो दुआएं की, अल्लाह ताला ने फिर उनकी दुआ को भी कबूल फरमाया, इनको भी शैतान से पाक रखा। इतनी भरी जवानी में उनका अपनी तरफ अल्लाह ताला ने उनका दिल कर दिया। अब देखें ये मकाम और मर्तबे एकदम दिल में आता है ना, आए अल्लाह कितना खूबसूरत इनको रश्क आता है ना, कैसा मकाम इनको मिला अल्लाह, कभी हमें भी कोई चुन ले किसी काम के लिए, अल्लाह ताला हमारे लिए भी कोई चुनाव आ जाए। तो देखिए चुना ऐसे नहीं जाता, चुनाव अल्लाह ताला का ऐसे नहीं होता कि अब देखें जो इनकी सिफात है वो देखें कि कैसी है, वो आम लड़कियों की तरह नहीं थी, हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती थी। तो ऊंचे मर्तबे पाने के लिए ना, मकाम पाने के लिए काम भी बड़े करने पड़ते हैं, कुर्बानियां भी बड़ी देनी पड़ती हैं। फिर अगर इंसान वो ही सब कुछ कर रहा है जो बाकी दुनिया कर रही है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, जिधर सारे चल रहे हैं उधर हमने भी चलना है, मन मौजियां भी करनी है, मन मानियां भी करनी है, दिल किया ये किया, दिल किया नहीं किया, दिल किया अल्लाह की मानी, दिल किया नहीं मानी, मैं खाऊंगी पीऊंगी सोऊंगी जागूंगी घूमूंगी फिरूंगी सब अपनी मर्जी से, लेकिन अल्लाह बस मुझे चुन ले, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप मुझे बताएं यहाँ पे हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, या कोई मेड स्कूल है, मेडिकल में जाने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कुर्बानी देते हैं, पढ़ पढ़ के हलकान हो जाते हैं, जिंदगी उनकी आधी हो जाती है, ना कहीं घूमना फिरना, ना किसी पार्टियों में जाना, ना दावतों में जाना, ना कोई सैर व तफरी, कोई इंजॉयमेंट वो कर ही नहीं पाते, बस सारे डाला का पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे। क्यों? ताकि मुझे मेडिकल स्कूल में मेरी सिलेक्शन हो जाए, मेरी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में मैं सिलेक्ट हो जाऊं। देखें ये दुनिया की छोटी छोटी जगहों की सिलेक्शन के लिए इतना क्राइटेरिया है कि वो 24 घंटे देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो मेहनती हैं, कौन से बच्चे हैं जो वाकई लायक हैं और इतनी मेहनत करके आए हैं, वो इतना उनका स्टैंडर्ड है, इतना बड़ा उनका क्राइटेरिया है कि बच्चे कुछ और कर ही नहीं पाते। वो तो नहीं इस तरह दूसरे बच्चों की तरह खेल तमाशे कर रहे, वो तो नहीं अपना टाइम वेस्ट कर सकते, उनका टाइम कैलकुलेटेड होता है, दिन और रात पढ़ रहे होते हैं बस। तो इतनी सी जगहों के लिए, इतनी सी डिग्रियों के लिए, इतनी सी छोटी यूनिवर्सिटियों की सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत, और अल्लाह के यहाँ सिलेक्शन के लिए आपका मतलब है कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा? हाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, या कोई क्राइटेरिया ही नहीं होगा, बस ऐसे ही भेड़ चाल है, हमारा दिल करता है हम भी, वो हर एक का दिल करता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाने का हर एक को दिल करता है, बड़े बड़े करियर्स का हर एक को दिल करता है, हर एक नहीं पा सकता ना, वही पा सकते हैं जिन जो कुर्बानी देते हैं, और जो जब चाहे सोए जब चाहे उठे, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी ये, फिर उसके बाद क्या चाहते हैं, चूजन मन हो जाए, क्या चाहते हैं कि मैं बस जिंदगी गुजारूं ऐसी कि जो जिसको कहते हैं आजाद, बिल्कुल मन मानी, खुद को किसी चीज पे कंट्रोल नहीं करना, सबर करना ही नहीं, जो लोग कर रहे हैं बाकी वैसे ही मैंने चलना है, आजकल तो यही ट्रेंड है, जिंदगी तो ट्रेंड्स और जो आज के लोग कर रहे हैं उसके मुताबिक गुजारनी है, लेकिन चाहत ये है कि अल्लाह मुझे भी सेलेक्ट कर ले, तो ऐसा नहीं होता। इंसान जितना बड़े मकाम पर पहुंचना चाहता है ना, उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उतनी कुर्बानी देनी पड़ती है। मादर पितर आजाद लोग जो है ना, वो नहीं अल्लाह के यहाँ मकाम पा सकते, बड़ा अपने आप को इसके लिए दिल को लाना पड़ता है अल्लाह की मर्जी पे, बड़ी इसके अंदर डेडिकेशन चाहिए। तो बड़े मकाम, बड़ी कुर्बानी, बड़ी मेहनत, और जो नहीं इसके ऊपर तैयार है फिर वो आम लोग, वो फिर हमारे जैसे ही रह जाते हैं, या मरियम उकनूती ली रब्बी की वसजुदी वरकई मा राकीन। अच्छा अब आप यहां पे भी देखें, एक बात नोट करें, जैसे वहां पे जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आपको ये खुशखबरी दी गई है, अब आपने बहुत अल्लाह का जिक्र करना है, अब आपने तस्बीह सुबह शाम करनी है। इसी तरह हजरत मरियम को भी जब इतनी बड़ी खुशखबरी दी गई, तो अब ये नहीं है कि बस अब तो जुड़े अल्लाह के यहां सिलेक्शन तो हो ही गई है, अब कुछ करने की क्या जरूरत है। नहीं, ए मरियम, अब आप ताबेदारी करें अल्लाह की, सजदा करें, रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। यानी अब आपको अल्लाह ने चुन लिया तो और ज्यादा बढ़ा दें अपनी इबादत। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर खड़े होके जिस वक्त प्याम इतना लंबा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर भी सूज जाते थे, तो आपको लोगों ने कहा आप क्यों इतना अपने आप को थकाते हैं, क्यों अपने आप को इतना हलकान करते हैं, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सब माफ कर दिए, सब आपके खता, आपको तो अल्लाह ने बुलंद दर्जे दे दिए, आप क्यों अपने आप को। आपने फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनू, यानी जब अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिया तो मैंने उसका शुक्र नहीं अदा करना। हम शुक्र में क्या करते, रिलैक्स हो जाते हैं, कोई खुशखबरी मिल जाए और रिलैक्स हो जाएंगे, जो पहले करते थे वो भी गया। और किस वक्त हमारी डेडिकेशन ज्यादा होती है इबादत में, जब हमारे पर कोई मुसीबतें आती हैं, जब कोई मसले आते हैं, तब डेडिकेशन होती है, तब लंबे कयाम होते हैं, तब ज्यादा रुकू और सजदे होते हैं। और जब रिलीफ मिल जाता है, खुशी मिल जाती है, इंस्टेड ऑफ कि उस वक्त ज्यादा बढ़ना चाहिए, जो पहला था वो भी गया, क्या ऐसा नहीं है। यहां पे पता चलता है अल्लाह ताला क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, जब वो आपको कोई नियमत अता फरमाते हैं उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या करें, आप झुक जाएं उसके आगे। और सजदा, जैसे मैंने आपको कहा सजदा शुक्र भी वो तो एक सजदा है ना, लेकिन यहां पे कहा गया सजदा कर, रुकू कर, रुकू करने वालों के साथ, यानी और उकनुती में मैंने आपको बताया तसलसल, एक दफा का नहीं है ये, सिर्फ इन सब के लिए सबर चाहिए हमसे। तो ये जो हमने अल्लाह को टाइम दिया होता है, हमसे तो इसमें भी सबर नहीं होता कि हम सबर से आराम से बैठ जाएं, उसमें भी ध्यान कहीं और लगे रहते हैं, अभी ये करना है या उठ के करना शुरू हो जाते हैं, साथ क्लास चलाई भी है, साथ काम भी हो रहा है। हमसे तो इतना भी अल्लाह को वक्त कि प्योरली अल्लाह की खातिर हो वो नहीं दिया जाता। हालांकि ये भी इबादत है, जिस वक्त आप बैठते हैं ना यहाँ पे इल्म लेने के लिए, और अगर इखलास से आप बैठे हुए, यकीन जाने आपका एक एक लम्हा, एक एक सांस जो आपकी चल रही है ना, एक एक ये जर्रा वक्त का अजरो सवाब का जरिया आपके लिए, ये इबादत है आपकी, ये इबादत है। तो अल्लाह ताला ने उनसे उनकी तरफ ये वही फरमाई, और इसी वजह से बाज कहते हैं कि वो नबिया थी, लेकिन इसमें इख्तलाफ बहुत ज्यादा है, जो कहते हैं नबिया थी वो इस वजह से कहते हैं कि उनके पास फरिश्ते आए, मगर ये भी हमें पता चलता है कि औरतों में से कोई नबी नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब उनसे ये कहा गया, तो अब ये इमाम औजाई कहते हैं कि हजरत मरियम अपने इबादत खाने में इतनी बकसरत खुशू से लंबी नमाजें पढ़ा करते हैं कि दोनों पैरों में जर्द पानी उतर आता था, यानी इतना लंबा कयाम करती थी। आप देखें हम तरावी में भी, रमजान में भी, इवन हमें थोड़ा देर के लिए खड़ा रहना पड़ जाए तो हमें होता है कि हाँ ये बहुत लंबी इमाम ने कयाम करा दिया। फिर यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको बताया था आयत 44 में कि अल्लाह ताला ने बताया कि कैसे इनको चुना गया था, और ये यहाँ पे हमें जिक्र पता चलता है ज़ालिक मिन अम्बा इल गैब, ये हैं गैब की खबरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी तो गैब की खबरें थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं विटनेस किया हुआ था कि ये क्या हुआ था, और ये ज़करिया अलैहि सलाम की भी, ये इनकी किताबों में, ईसाइयों की किताबों में भी बहुत कम ये जिक्र था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये गैब की खबरें हैं, नूह ही इलाई, हम वही करते हैं आपकी तरफ, यानी ये एक दलील है, क्योंकि कोई और गैब की खबरें इस तरह से नहीं दे सकता। वमा कुंता लदैहिम इज युल्कून अकलामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम, और आप वहां पे मौजूद नहीं थे जिस वक्त वो लोग अपनी कलमे डाल रहे थे कि कौन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत करेगा। यानी आपको जैसे मैंने बताया कि ये लेकर गई थी हजरत हन्ना जो थी, वो हजरत मरियम को जब लेकर गई तो तो वो उन्होंने कहा कि हम नहीं इनको कबूल कर सकते, मगर जब इन्होंने बताया अपनी सारी ख्वाब वगैरह बताए, तो फिर हर कोई भाग रहा था इनको लेने के लिए। अब ये हो गया कि अब झगड़ा हो गया, ममा कुंता लदैहिम इज़ यख्तसिमून, आप उनके पास नहीं थे जब वो झगड़ रहे थे कि कौन इनको लेगा, अब ये इतनी बाबरकत बच्ची है, हम इसकी किफालत करना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा हम कुरा डालते हैं। जकरिया कह रहे थे कि ये मेरी बीवी की भांजी है तो मैं इसका खालू हूँ, इस लिहाजा मुझे मिलनी चाहिए। दूसरे लोग कह रहे थे हमें मिलनी चाहिए, तो कोई भी राजी नहीं हो रहा था। तो कुरा में उन्होंने क्या किया, वो जो जितने उलमा थे जो तौरात लिखने वाले थे उनके पास तो कलमे ही थी ना, तो उन्होंने कलमे अपनी डाली जिनसे वो तौरात लिखते थे, और ये कलमे डाली गई पानी के बहाव के साथ, जो कलम निकल जाए वो नहीं और जिसका कलम ठहर जाए वो उन्होंने कहा कि हजरत मरियम का कफील होगा। तो सबकी कलमे पानी में बह गए, हजरत जकरिया का कलम बस ठहर गया। ठीक है, तो कुरा अंदाजी जायज है ऐसे कामों में कि जिसमें कोई आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी बीवी को सफर में ले जाना चाहते थे तो कुरा डालते थे, ताकि किसी के साथ भी कोई ज्यादती ना हो, सबकी अगर इक्वल सबकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब इसके अंदर भी इंसान सोचता है कि किसको क्या चीज दी जाए, तो उस वक्त कुरा डाल सकते हैं। मसला है कि कोई एक मकान है, अब किसी को विरासत में मिला है, कौन सा ऊपर का हिस्सा कौन ले और नीचे का कौन ले, तो अब उसके लिए कुरा डाल सकते हैं। कोई ऐसे काम है जिस जो जायज काम है और आपको समझ नहीं आ रही, तो उसमें कुरा डाला जा सकता है, जिसमें किसी के ऊपर ज्यादती ना हो या किसी का भी ज्यादा हक या किसी का कम हक ना हो, सबके इक्वल हो। तो ये इस तरह से इतनी अल्लाह ताला ने उनको वैल्यू दी। देखें एक वक्त वो है कि माँ कह रही है कि हाय अब इसके साथ कैसे ये काम हो सकेगा जो मैंने नजर मानी है, कैसे पूरी हो सकेगी, और एक वक्त वो है कि लोग झगड़ रहे हैं कि हमने लेना है, हमने इसकी किफालत करनी है। तो ये अल्लाह ही है जिसको जो दर्जे चाहे अता फरमाए, ये अल्लाह ताला की कदरदानी है, ये अल्लाह की कबूलियत है उस बच्ची के लिए। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة سنية.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.